हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 25। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञं यज्ञे नैवोपजुहवति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो अब यहाँ भगवान अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन करेंगे। हर व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार एक विशिष्ट प्रकार के यज्ञ को करने में प्रेरित होता है भगवान के द्वारा, और उसको कैसे करते हैं उस पर भगवान चर्चा होगी। तात्पर्य जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी हैं, किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पिछले श्लोक जो 24 नंबर का श्लोक है उसमें जो भगवान बता रहे हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवीर ब्रह्मगणम ब्रह्मनाहुतम, उस संबंध में प्रभुपाद जी ने समझाया वहां पे कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है वो अपने स्वरूप को समझता है कि वो कृष्ण का दास है और सीधे कृष्ण के सेवा में लग जाता है। तो इस कारण से जो उसकी वस्तुएं हैं, जो स्वयं है, सब आध्यात्मिक स्तर पर आ जाता है। लेकिन कुछ लोगों की चेतना इस प्रकार की नहीं होती है, या कह सकते हैं सभी की चेतना इस प्रकार की नहीं होती है। स्वीकार करने वाली बात कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं भगवद्गीता से सुन करके ये लोग नहीं स्वीकार करते, तो ऐसे लोग देवताओं की उपासना करते हैं या फिर ब्रह्मज्ञाव यानी कि निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं यज्ञ के द्वारा। अलग अलग यज्ञ होते हैं, ज्ञान यज्ञ इत्यादि के द्वारा। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है, सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ यानी द्रव्य यज्ञ तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भावित हैं उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बहु ईश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही परब्रह्म है जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही होती है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है किंतु उसका प्रत्यक्ष स्वरूप नष्ट नहीं होता। तो देखिए प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर इस पैराग्राफ में तीन प्रकार के लोगों को एक साथ रख के दिखाया है। एक है कर्मी, वेदों में कर्मकांड ज्ञानकांड उपासनाकांड है भक्ति, तीनों चीजें हैं। तो जो व्यक्ति भौतिक लालसाओं से ग्रस्त है वो प्रायः अपनी इस चेतना के अनुसार ऐसे यज्ञ करेगा जो जिनका वर्णन वेदों में है, अगर वो वेदों को पालन करता है, जिसके द्वारा उसको स्वर्ग प्राप्ति हो। यहाँ वो कुछ आहुति देगा अपने द्रव्यों की यानी अपने पदार्थों की, घी या हवन सामग्री जो भी है वस्तु जो यज्ञ में की जाती है, अर्पित की जाती है, और उसके द्वारा उसको एक विशिष्ट प्रकार के देवता का लोक प्राप्त होगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि क्या वो ये समझ नहीं पा रहा है कि ये जगत नश्वर है, ये जगत अशाश्वत है, दुख का घर है। हाँ वो नहीं समझ पा रहा है क्योंकि उसकी चेतना कह सकते हैं निम्न कोटि की है, तो वो समझ नहीं पा रहा है कि जगत में कहीं पे भी हम जाएं, चाहे पृथ्वी लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो, चाहे ब्रह्म लोक, हमें दुख ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से शारीरिक चेतना से ग्रस्त व्यक्ति स्वर्ग जाने की प्रार्थना करता है और कहता है इस उनके उनकी चेतना के अनुसार उससे अधिक कुछ नहीं है। तो इसलिए वेदों में कर्म कांड का वर्णन है और इसके द्वारा व्यक्ति स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन भगवान की सृष्टि इस प्रकार से है कि चाहे व्यक्ति कितनी भी भौतिक संपदा इकट्ठा कर ले, वो सुखी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से कई कई जन्मों तक जब व्यक्ति कर्मकांड करता रहता है, उसकी आसक्ति रहती है और उन क्रियाओं को संपन्न करता रहता है जो कर्मकांड की होती हैं, तो उन क्रियाओं को करने से शुद्धि होती है, एक बात। दूसरा, देवता भगवान विष्णु की के ही अंग हैं, तो देवताओं की उपासना करने से धीरे भगवान की उपासना होती है, लेकिन गलत तरह से होती है, फिर भी शुद्धिकरण धीरे धीरे होता है। और जब इस प्रकार का शुद्धिकरण होता है तो धीरे धीरे व्यक्ति को समझ में आता है कि ये जगत जो है वो नश्वर है, अशाश्वत है और मैं किसी भी भौतिक परिस्थिति में सुखी नहीं हो सकता इस जगत में। तो फिर उसकी जो मति है वो कर्मकांड से उठ करके ज्ञान कांड की तरफ जाती है, जिसमें वो प्रश्न करता है कि मैं हूं कौन, और अपनी जो उपाधियों से ग्रस्त चेतना है जिसमें हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इससे वो अपने आप को पृथक देख पाता है। और इस प्रकार के दार्शनिक चिंतन को ज्ञान योग कहा जाता है, जिसमें हम सोचते हैं हम शरीर नहीं हैं और तपस्या करते हैं, सबके प्रति संभाव रखते हैं। इस चीज को 12वें अध्याय में भगवान गीता में बताएंगे। और इस तरह से वो ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होता है, वो देखता है कि जगत में क्रिया करके मुझे या अपने अस्तित्व को बना करके रखने से मुझे दुख प्राप्त हुआ है, तो इसलिए वो सोचता है अच्छा तो मेरे अस्तित्व की वजह से मेरे को दुख प्राप्त हुआ है, यहाँ के जगत के संबंधों की वजह से दुख प्राप्त हुआ है, क्रियाओं की वजह से दुख प्राप्त हुआ है, इच्छाओं की वजह से दुख प्राप्त हुआ है, तो सबसे अच्छा तरीका है इसको खत्म कर देने के लिए। तो वो प्रयास करते हैं कि ब्रह्म जो भगवान के शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति है उसमें वो जा करके अपने अस्तित्व को लीन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा कभी भी आत्मा का अस्तित्व कभी भी नष्ट नहीं होता है। लेकिन ब्रह्म में जो ब्रह्म का साक्षात्कार है या जो पर जो ब्रह्म ज्योति है उसमें इस जगत की जो परेशानियां हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि नहीं है। तो इस प्रकार का सुख कैसा सुख है, जैसे हम लोग जब गहरी नींद से उठते हैं तो बड़ा फ्रेश महसूस करते हैं, जैसे कहना चाहिए। तो यानी कि वो दो चार घंटा जब हमको कोई दुख की अनुभूति नहीं हुई तो उसको वो जो सुख होता है उस प्रकार का सुख है ब्रह्म का सुख। लेकिन पॉजिटिव ब्लिस, पॉजिटिव आनंद, सकारात्मक आनंद वो प्राप्त नहीं होता है। ये प्रभ जीवात्मा को प्राप्त होता है जब हम जीवात्माएं अपनी वास्तविक स्थिति को भगवान से समझें और वो है उनके नित्य अंश के रूप में। और यही बात यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो भगवान के जो भक्त हैं अर्जुन, वो कोई कर्मकांड नहीं कर रहे हैं, अपितु वो समझते हैं कि मैं मतलब वो और उनकी सारी संपदा समस्तः भगवान की ही है। इसलिए हर क्रिया को, हर वस्तु को वो भगवान को समर्पित करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब कोई व्यक्ति कर्म कांड करता है तो वस्तुओं को देवताओं को अर्पित कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य होता है कि उसके बदले में उसको वस्तुएं प्राप्त हों और उससे उसकी इंद्रिय तृप्ति हो। लेकिन भक्त जब भगवान के लिए कुछ समर्पित करता है, भगवान को नैवेद्य भोग लगाता है, आरती करता है, कोई भी करता है, तो ये अपनी स्वरूपगत स्थिति को समझते हुए कर रहा है कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, नित्य दास हूँ, ये मेरा एकमात्र कर्तव्य यही है कि मैं कृष्ण की सेवा करूँ। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भक्त जो है कृष्ण की सेवा नहीं करते, सच्चे भक्त, ऐसा काम भक्त भी होते हैं लेकिन सच्चे भक्त इस प्रकार से नहीं करते। और दूसरा चीज ये है कि अपनी अस्तित्व को नष्ट नहीं करते, जो हम भक्ति करते हैं उससे हमारी उपाधियां भी नष्ट होती हैं। हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, भगवद गीता सुन रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो हमारा जो मिथ्या अहंकार है वो नष्ट होता है, लेकिन हमारा जो असली अहंकार है कि मैं कृष्ण का दास हूँ ये नष्ट नहीं होता, बल्कि अपितु जितना हम भक्ति करते जाते हैं उतना ही अधिक और ये प्रकट होने लगता है कि मैं भगवान का दास हूँ और मेरा भगवान से क्या संबंध है, ये सब कुछ प्रकट होने लगता है। तो ये चीज़ हमें समझ में आना चाहिए कि इन तीनों में बहुत बड़ा अंतर है, तीनों एक ही स्तर के यज्ञ नहीं कर रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए। तो हमने श्लोक में समझा जो कर्मकांडी लोग हैं उनकी क्या स्थिति है, जो जो ज्ञानकांडी हैं उनकी क्या स्थिति है, और जो भक्त हैं उनकी क्या स्थिति है। एक दिक्कत है, ज्ञानकांडी लोग जो हैं जो ब्रह्म की उपासना करते हैं उनको ज्ञानकांडी लोग जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, उन लोगों के संग दिक्कत यह है कि वो अस्तित्व को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अस्तित्व आत्मा का नष्ट होता नहीं है और कृष्ण की सेवा का सुख उनको मिलता नहीं है, तो फिर वो वापस इस भौतिक जगत में आ जाते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि भले ही वो बोलें कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन वो आकर के यहाँ पे बहुत बड़े हॉस्पिटल या और कुछ धर्म अन्य क्षेत्र इत्यादि चला देते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि आत्मा की स्वरूपगत स्थिति है सेवा करने की, और वो हमारे सच्चे शाश्वत स्वामी हैं भगवान कृष्ण। तो हमारी जो सच्ची स्टेबल स्थिति है, शाश्वत रूप से स्टेबल स्थिति है, वो है कृष्ण के दास के रूप में। और जब हम भगवान के धाम पहुंचते हैं भक्ति के माध्यम से, तो फिर हम लोग कभी जगत पे नहीं वापस आते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा का सुख जो है वो जीवात्मा को असीमित आनंद प्राप्त करता है। एक और बात समझ में आना चाहिए कि आत्मा क्योंकि अणु है, इसलिए केवल आत्मा का साक्षात्कार हमें बहुत थोड़ा सुख देता है, लेकिन भगवान क्योंकि विभू है, अनंत है, इसलिए भगवान का साक्षात्कार और भगवान से अपने संबंध का साक्षात्कार से आत्मा को असीमित आनंद प्राप्त होता है। तो इससे फिर आत्मा वापस इस भौतिक जगत में नहीं आने आएगी। एक श्लोक और देखेंगे, श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्यान्ये संयमग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्य इंद्रिय अग्निषु जुह्वति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। मानव जीवन के चार आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। थोड़ा समझे इस बात को, यानी कि अपने अपने स्वभाव के अनुसार और आश्रमों के अनुसार समाज की व्यवस्था भगवान ने इसलिए करी है ताकि व्यक्ति अपने मन और शरीर के स्वभाव के अनुसार समाज में ठीक प्रकार से सुचारू रूप से कार्य कर सके और अपने उन कार्यों को कृष्ण को समर्पित कर सके। केवल अच्छा गृहस्थ, अच्छा ब्रह्मचारी बनना ये ही ठीक नहीं है, अपितु उसका संबंध भगवान से जोड़ना चाहिए। जैसे उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आप खिचड़ी बना रहे हैं, तो खिचड़ी में दाल, चावल, टमाटर, पालक, गोभी, लौकी सब कुछ डाला आपने, हल्दी डाल दी, सब कुछ डाल दिया, लेकिन उसमें नमक नहीं डाला, तो आप देखेंगे खिचड़ी यूजलेस हो जाती, कुछ खाने के लायक नहीं रहती। उसी प्रकार से हम अच्छे सारे कार्य करें इस जगत में, लोग बोलते भी हैं इस बात को, हम सारे कार्य अच्छे करें तो भगवान की भक्ति करने से क्या लाभ होगा। तो यही उदाहरण से आप समझिए कि जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा व्यंजन बनाया आपने, खिचड़ी बनाई, लेकिन उसमें नमक नहीं डाला तो उसमें कोई स्वाद नहीं आता, कोई सुख नहीं मिलता। ऐसे ही जगत में हम बहुत सारे कार्य करते रहे, लेकिन कृष्ण को अपनी वाणी, अपने मन और अपना शरीर समर्पित ना करें, तो ये सारी चीज़ें केवल डेकोरेशन ऑफ अ डेड बॉडी, यानी कि एक मृत शरीर का आभूषण है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं, ये कह सकते हैं ये स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका प्राण है कृष्ण को समर्पित होना। कोई ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है या संन्यास है, उसे कृष्ण का भक्त होना चाहिए, कृष्ण के लिए उसकी इंद्रियां युक्त होनी चाहिए। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। इसका अर्थ ये नहीं है कि मानव जीवन में हम इंद्रिय तृप्ति नहीं कर सकते। इंद्रिय तृप्ति भी नमक की तरह है, जो बहुत अधिक होने से भी दिक्कत है और बहुत कम होने से भी दिक्कत है। इस बात को भगवान छठे अध्याय में बोलेंगे कि हमें नियमित रूप से सोना चाहिए, नियमित रूप से खाना चाहिए। तो इसलिए जो इंद्रिय सुख है उसको हम जीरो नहीं कर सकते, और जीरो करने के लिए भक्ति जो मार्ग है वो बोलता भी नहीं है, लेकिन उनको भगवान के संबंध में हमें अपने इंद्रिय सुख को देखना चाहिए, करने का प्रयास करना चाहिए। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं, श्रवण ज्ञान का मूल आधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरेर नामानु कीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवण इंद्रिया हरे कृष्णा की आध्यात्मिक ध्वनि के सुनने में ही लगी रहती है। ये बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं। दूसरे अध्याय में भी प्रभुपाद जी ने इस बात को समझाया था कि जो बुद्धि है वो अहंकार का एकदम निकट का पड़ोसी होता है। तो बुद्धि और मन में भोगी वासनाएं सुनने के माध्यम से आती हैं। जिन वस्तुओं को, जिन भोगों को मैंने कभी देखा नहीं है, उनके बारे में मेरी कोई स्प्रिया नहीं होती है उनको भोगने की, लेकिन जब हम उन दृश्यों को देखते हैं या उसके बारे में सुनते हैं तो हमारी इच्छा आने लगती है। तो इसलिए इस बात को शिला रूपों को समय भी बताते हैं प्रजल्प। अगर हम दुनियादारी की बातें बहुत करते हैं, स्पेशली ब्रह्मचारियों के बारे में बात हो रहा है, तो उनको तो जगत से वास्तवतः कोई वास्ता ही नहीं होना चाहिए, नहीं होता भी है। इसलिए जगत की वार्ता को सुनने से हमारे हृदय में भौतिक वासनाओं का निर्माण होता है। तो ये बहुत ही संगीन विषय है। चाहे वैसे इस विषय में तो चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी, हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि भौतिक वार्ताओं को ना सुने। और इसके विपरीत जो हम हरि कथा सुनते हैं, हरि नाम सुनते हैं, इससे हमारे हृदय की शुद्धि होने लगती है। काम इत्यादि जो हमारे हृदय में भरा हुआ है वो धीरे धीरे करके नष्ट होने लगता है। तो इसलिए हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए कि किन किस शब्द ध्वनि के हम संपर्क में आ रहे हैं। हरि कथा सुनेंगे तो भगवान के चरणों में प्रेम होगा, और हरि विमुख होने वाली कथा सुनेंगे, जगत की वार्ता सुनेंगे, तो भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम जगत की वार्ता करते हैं, जगत के इश्यूज को डिस्कस करते रहते हैं जिनका संबंध भगवान से नहीं है, तो हमारी जो भगवान की सेवा करने की इच्छा है, सेवन उन्मुखता है, वो खत्म हो जाती है और भोग उन्मुखता बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति को ब्रह्मचारी रहना है तो उसको प्रयास करना चाहिए कि उसका जो शब्द है, उसकी जो वाणी है, उसके जो कान है, वो सदा भगवान के गुण कीर्तन में लगा रहना चाहिए। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, श्रवण ज्ञान का मूल आधार है। जब तक हम किसी वस्तु के बारे में सुनते नहीं हैं, हमें सच्चा सच्चा ज्ञान नहीं होता। जैसे हम लोग जो भी भक्ति में आए हैं, सबसे पहले हमने भगवान के बारे में सुना और इस जगत के बारे में सुना। तो जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि ये जगत जो है वो सुख का घर है, तब तक रियली भगवान की भक्ति करने का उत्साह नहीं आएगा। इसलिए हमें श्रवण करना चाहिए इस जगत के सच्चे स्वरूप के बारे में, भागवतम से, श्रीमद् भगवद गीता से, और इसके द्वारा हम इस जगत में कैसे रहें, जिसके द्वारा हम जगत में कर्म बंधन से ना फंसें लेकिन जगत में रहते हुए भी कार्य कर सकें, इस चीज़ को हमें भगवद गीता से सुन करके समझना चाहिए। तो इसलिए दोनों ही चीज़ें आवश्यक हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप और भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का श्रवण। तो दोनों के माध्यम से हमारी जो गाड़ी है बहुत सही पटरी पर चलेगी। नहीं तो डिफॉल्ट मोड कह लीजिए या स्वभाव जो हमारा है वो यही है कि इस जगत को हम अपने भोगने के रूप में, भोग्य के रूप में देखते हैं। इसी प्रकार से गृहस्थ भी जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की समान प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप में प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। इस संयमित अनासक्त यौन जीवन यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी इस प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति को आहुति कर देता है। थोड़ा इसको समझना चाहिए। विवाह भी एक यज्ञ है, क्यों? इसका उद्देश्य है कृष्ण भावना भावे संतानों की उत्पत्ति करना। कुत्ते बिल्ली की तरह इंसानों को, संतानों को उत्पन्न करना ये ठीक नहीं है। इससे तमोगुणी संतान उत्पन्न होंगे जो समाज में केवल अव्यवस्था को बढ़ाएंगे। तो इसलिए सब जिस व्यक्ति की विवाह करने की इच्छा है तो उसको ये कर्तव्य बुद्धि से कि मेरा ये कर्तव्य है कि मैं कृष्ण भावना भावित होकर के कृष्ण भावना भावे संतानों को उत्पत्ति करूं, इस दृष्टि से यौन जीवन का उपयोग करना चाहिए। नहीं तो अगर कुत्ते बिल्ली की तरह हम भोग करते रहेंगे तो फिर हम शारीरिक चेतना से ग्रस्त रहेंगे। ये हमें श्रीमद् भागवतम के आधार पर हम सुनते हैं, पुंसाम स्त्री मैथुनी भावमितम तयोर मितो हृदय ग्रंथे माहु अहो क्षेत्र सुताप्तवित्ते जनस मोहो यम अहम अमेति। ये जो हमारे शरीर, हम शरीर हैं और शरीर से संबंधित वस्तुएं हमारी हैं, ये जो मोह है वो कैसे उत्पन्न होता है? इसका मूल कारण है पुंसाम स्त्रीय मैथुनी भावमितम, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण और स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण। और जब जितनी अधिक मात्रा में स्त्री और पुरुष का संग होता जाता है तो दोनों के हृदय में एक हृदय ग्रंथि बन जाती है, तयोर मिथो हृदय ग्रंथि मा, मिथ मतलब साथ में आने से। तो जितना स्त्री और पुरुष का संग होगा उतना दोनों के हृदय में ये भावना आ जाएगी कि अहम, मतलब अहम ममेति, ये शरीर, मैं ये शरीर हूँ और शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। और फिर इस जगत में व्यापार हम बहुत बढ़ा लेंगे, बच्चे के रूप में, समाज के रूप में और ऐसे करके। तो ऐसा नहीं बोला जा सकता है, बोला जा रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का संग नहीं कर सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी संबंध में बोलते थे कि अगर किसी को कृष्ण भावना भावित संतान करना है तो दोनों पत्नी और पत्नी को 50 माला का जप करके करने के बाद ही कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए, वो भी महीने में केवल एक बार। तो इस प्रकार से सैमित जीवन जीने से ये गृहस्थ जीवन भी भगवान की भक्ति को समर्पित हो जाता है। और लोगों को ये सब बातें बहुत कठोर लग सकती हैं, लेकिन जब व्यक्ति भक्ति करता है तो स्वतः ही उसका जो भोग की इच्छा है वो अपने आप समाप्त होने लगती हैं। तो ये बातें बड़ी आराम से सेट हो जाती हैं हमारी चेतना में। तो इस प्रकार का व्यक्ति जो जिसकी ब्रह्मचारी जीवन में ट्रेनिंग नहीं है उसको ये सब बातें बड़े कठोर लग सकती हैं, नियम बड़े कठोर लग सकते हैं। लेकिन अगर जैसे पहले हुआ करता था ब्रह्मचारी आश्रम में ट्रेनिंग होने के बाद सबको समझ थी कि ये इंद्र तृप्ति ही मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो ये सब बातें और क्या और अन्य लोग कैसे अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्णा।